प्रिय श्रोताओ नमस्कार। हमेशा की तरह आपका मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी पहला थिस्सलुनीकियों नामक पत्रिका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ हम विश्वास करते हैं कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस बाइबल अध्ययन को सुने और जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हमने देखा है कि पौलुस प्रचारक ही नहीं था, अपनी कलीसिया के लिए माँ और पिता था और एक भाई भी था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद से। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे ताकि हम आज के वचन को अच्छी रीति से समझ सकें। हमारे जीवित और सामर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, विशेष करके हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपने अनुग्रह दें ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुनते हैं तो प्रत्येक के जीवन में आपका वचन फल लाने पाए। प्रेम पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन से निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तनाव में हैं या किसी प्रकार की बीमारी में हैं। पिताजी, आप उन पर अनुग्रह करें, उन्हें अपनी शांति और चंगाई प्रदान करें ताकि प्रत्येक जीवन आप में आनंदित होने पाए। आज के वचन के द्वारा आप प्रत्येक से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री में कलीसिया के लिए वह माँ, पिता और एक भाई था। माँ के समान वह अपनी कलीसियाओं को ढाढ़स बंधाता था, पिता के समान उनका मार्गदर्शन करता था और भाई के समान उन्हें मसीही जीवन में चुनौती देता था। प्रेरित पौलुस की सेवकाई में भाई का पक्ष चुनौती देना है। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि पौलुस परमेश्वर का वचन कैसे सुनाता था। कुछ लोग उसके प्रचार से अप्रसन्न थे क्योंकि परमेश्वर का वचन नमक है और जीवन में पाप के घाव पर वचन रूपी यह नमक जलन उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन ज्योति भी है, परंतु बहुत लोगों को अंधकार पसंद है क्योंकि उनके कार्य बुरे हैं। इस अध्याय में पौलुस सीख रहा है कि परमेश्वर की कलीसिया इस पृथ्वी पर परमेश्वर के परिवार का रूप है। वह विश्वासियों के साथ माँ का संबंध, पिता का संबंध और अब एक भाई का संबंध निभाता है जिसे विश्वासी प्रायः करते हैं। हमारी कलीसिया एक पारिवारिक कलीसिया है, परंतु उनके कहने का अर्थ यह होता है कि उनके पास बच्चों के लिए शिशु घर है, छोटे बच्चों के लिए कक्षाएं हैं, किशोरों के लिए कक्षाओं की व्यवस्था है, माता पिता के लिए दंपतियों का कार्यशाला है और वरिष्ठ नागरिक, दादा दादी, नाना नानी के लिए भी अलग से स्थान है। इसी कलीसिया को आज पारिवारिक कलीसिया कहा जाता है। मैं नहीं जानता कि पौलुस ने कलीसिया को इस प्रकार विभाजित किया था या नहीं। हम जब कहते हैं कि कलीसिया परमेश्वर के परिवार का रूप है, तो कहने का अर्थ यह नहीं है। मेरे प्रियो, कलीसिया को समाज में परमेश्वर का प्रकाशन प्रकट करना है। पति पत्नी और बच्चों के पारिवारिक संबंध संसार में परमेश्वर और प्रभु यीशु के प्रेम के तीन गुना रूप प्रकट करें। पौलुस स्थानीय कलीसिया के माँ के स्वरूप के बारे में चर्चा कर चुका है। वह दिन रात काम करके उनका पोषण करता था, जैसे चिड़िया अपने चूजों का पालन पोषण करती है। वह 8 घंटे की नौकरी नहीं करती, वह सदैव सक्रिय रहती है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि वह कलीसिया के लिए एक पिता के समान था। परिवार में बच्चे को पिता के प्रेम और माता की दुलार की आवश्यकता होती है। आज बच्चों के लिए एक बड़ी त्रासदी है कि माता पिता तलाक ले लेते हैं और अधिकतर बच्चे पिता के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। पिता के प्रेम का प्रदर्शन अनुशासन में होता है। पौलुस कहता है कि वह थिस्सलुनीकी के विश्वासियों के लिए पिता के समान था। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है कि जब एक बेटा या एक बेटी अर्थात बच्चे पिता के प्रेम के बिना जीवन जीते हैं, तो निश्चय ही वे पिता के प्रेम को नहीं जान पाते हैं और उनका जीवन गलत संगति में चला जाता है, क्योंकि पिता अपने बच्चों को अनुशासन में रखता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ बहुत ही अच्छे बाइबल शिक्षक हैं जो शांति के अतिरिक्त और किसी बात का प्रचार नहीं करते हैं। वे सदैव पवित्र जनों के लिए सदा ही शांति का संदेश सुनाते हैं। श्रोताओं को यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सबको शांति की आवश्यकता है। मुझे पीठ सहलाना और सिर पर हाथ फेरना अच्छा लगता है। यह शरीर के लिए शांतिदायक और आनंददायक होता है, परंतु हमें केवल शांति ही नहीं, अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। मुझे खेद है कि हमारे घरों में ही नहीं, देश वरन कलीसिया में भी पिता के अनुशासन की आवश्यकता है। अब सेवा का भाई पक्ष कलीसिया में परिवार की संतान द्वारा प्रकट किया जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ें और देखें 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम हे भाइयों, परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। ध्यान दीजिए, हे भाइयों, भाई कैसे बन जाता है, अर्थात कैसे बना जाता है। भाई बनने के लिए 2 बातों की आवश्यकता है। जाति और रंग भेद की चिंता न करते हुए उसे स्वीकार करना। यह सच है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इससे कोई अछूता नहीं है। यह पापियों का भाईचारा है। क्योंकि यह पापियों का भाईचारा है, इसलिए यह प्रेम करने वाला समूह नहीं है। वहां आपको अपने भाई से सावधान रहना पड़ता है। आप उस पर सदा ही विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में पाप का स्वभाव है। पौलुस के अनुसार वह क्या बात है जो थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को भाईचारे में एक चित करती है? तुम लोगों ने अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया। ध्यान दीजिए, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया मुख्यतः एक अन्य जाति कलीसिया थी और वे सताव का सामना कर रहे थे। यह सताव वह नहीं था जो राजाओं ने उन पर किया। थिस्सलुनीकियों में विश्वासियों को सताया जा रहा था, अतः पौलुस उनसे कहता है कि वे अपनी जाति के हाथों वैसा ही कष्ट उठा रहे थे जैसा यरूशलेम में यहूदी विश्वासी अपने जाति भाइयों के हाथों से कष्ट उठा रहे थे। परंतु इन कष्टों के कारण उनमें एकता और भाईचारा बढ़ेगा। वे कष्ट उठाने में भाई भाई थे, क्योंकि वे एक साथ कष्ट उठा रहे थे। कष्ट विश्वासियों को जोड़ने वाला सीमेंट है, जो एक दूसरे के नजदीक लाता और उन्हें उत्साहित करने में मदद करता है। विश्व में कुछ स्थानों पर कलीसियाओं में परस्पर एकता नहीं है, जिसका कारण पुराने नियम में होशे ने व्यक्त किया था। उसने इसराइल से कहा, एप्रेम मोटा हो गया और लात मारने लगा, अर्थात उन्हें समृद्धि प्राप्त हुई और वे आलोचनात्मक हो गए। आज कलीसिया में अनेक जन जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कुछ प्रार्थना समूहों को भी जानता हूं जो लगातार जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जागृति की प्रार्थना करने के लिए एकत्र भी होते हैं। मैंने उन्हें कभी प्रार्थना करते नहीं सुना कि वे कष्ट उठाएं या उन्हें सताया जाए, कि उनमें जागृति आए। कुछ लोग रुचि जागृत होने को जागृति कहते हैं, परंतु मैं इसे जागृति नहीं मानता। मेरे विचार में यदि कलीसिया में जागृति आई तो हम सब जान पाएंगे। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, क्या आप सोचते हैं कि यह जागृति है? जी नहीं, आपको स्वयं से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। परंतु मैं यह मानता हूं कि यदि कलीसिया सताई गई तो वह विश्वासियों को निकट लाएगी। हम एक दूसरे पर कटाक्ष करना बंद कर देंगे, तब हम परमेश्वर की प्रत्येक संतान को अपना भाई मानेंगे और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उन्हें उत्साहित करेंगे। हमें कुछ बातों पर मतभेद होगा, परंतु प्रभु यीशु में प्रत्येक विश्वासी मेरा भाई है। हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं और हमें संसार को यह दिखाना है। जी हाँ, जब कलीसिया संसार पर यह प्रकट करेगी तब जागृति आएगी। हम जागृति के लिए प्रार्थना का छोटा रास्ता अपनाते हैं। हम जागृति आने की परिस्थितियों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? मेरे मित्रों, यह मनुष्य की सर्वोत्तम इच्छा थी जिसके कारण पूर्व काल में जागृति आई थी। इंग्लैंड में जब गृह युद्ध की स्थिति आने वाली थी, तब जॉन वेस्ली द्वारा जागृति लाई गई थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि जागृति की ऐसी ही परिस्थितियां होती हैं। यदि आज हमारे बीच में जागृति आनी है तो ऐसे परिस्थितियों की आवश्यकता है जिसके द्वारा से हम परमेश्वर के निकट आते और प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय और उसके 15 और 16 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। मैं धर्मशास्त्र के इस अंश को असाधारण मानता हूं। यह एक महान सिद्धांत प्रकट करता है, परमेश्वर पाप को अपना पूरा काम करने देता है। भविष्यद्वक्ता एक उपमा काम में लेते थे, पाप का कटोरा भरना होगा। परमेश्वर कटोरे को भरने देता है, परमेश्वर उस पर रोक नहीं लगाता है कि शैतान कभी कहने ना पाए, मुझे परमेश्वर ने काम पूरा करने का अवसर ही नहीं दिया। मेरे विचार में महाक्लेश के समय परमेश्वर शैतान को अपना राज्य पूरा करने की अनुमति देगा। हम आगे देखेंगे मसीह के सच्चे गवाह का प्रतिफल। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। हे भाइयों, यह है सच्चा भाईचारा, यह है वास्तविक कलीसिया का अभियान। यदि कोई मसीह में है तो वह उन सब का भाई है जो मसीह में हैं। मसीह के बिना केवल पापियों का ही भाईचारा होता है। वचन कहता है, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे। प्रेरित पौलुस की यह कैसी उत्तम बात है। वह वास्तव में थिस्सलुनीके से भगाया गया था, परंतु उसका मन वही था। वह उन विश्वासियों से बिछड़ना नहीं चाहता था। उसके मन में उनसे फिर से भेंट करने की लालसा थी और वह उनसे बाद में मिला भी। आइए हम पढ़ें पहला थिस्सलुनीको 2:18 में लिखा हुआ है, इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। पौलुस में आत्मिक अंतर्दृष्टि थी कि वह देख पाए कि उसके थिस्सलुनीके के न जाने के पीछे शैतान का अवरोध है। शैतान अर्थात बैरी। आज भी शैतान परमेश्वर के कार्य को रोकता है, उसके कार्यक्रम में रुकावट डालता है, विघ्न डालता है। हमने इसके अनेक उदाहरणों को देखा है। हमारे वृहत रेडियो कार्यक्रम अनेक स्थानों में पहुंच रहे हैं और हमारा सेवा कार्य अत्यधिक सुचारू रूप से चल रहा है। तभी ऐसा होता है कि एक अधर्मी मनुष्य रेडियो स्टेशन खरीदकर सब मसीही कार्यक्रमों को अर्थात प्रभु के वचन के कार्यक्रमों को रोक देता है। यह शैतान अर्थात बैरी का काम है। वह नहीं चाहता कि परमेश्वर का कार्य प्रगति पर जाए अर्थात उसके वचन का प्रचार लोगों तक पहुंचाया जाए। वह नहीं चाहता कि मसीही लोग प्रभु के निकट आए, उसके वचन में बढ़ें। और यही कारण है कि पौलुस शैतान अर्थात बैरी कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:19-20 में आगे लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि एक महान आशा जो उसे है कि जब प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आएगा, तब वह उन सब को देखेगा जिनको वह मसीह के पास ले आया है। थिस्सलुनीके के विश्वासी जिन्हें वह मसीह के पास ले आया है, वे सब उसके लिए सदा आनंद थे। जी हाँ, प्रसंगवश क्या ऐसा कोई मनुष्य है जो स्वर्ग जाने वाला हो, जो आपके पास आकर धन्यवाद कहे कि आपने परमेश्वर के वचन के प्रसारण में उसका साथ दिया? क्या आपने परमेश्वर के सेवा में सहयोग प्रदान किया है? यदि आपने ऐसा किया है तो जिसे आपने कभी नहीं जाना, जो पृथ्वी के दूसरे छोर पर है, वह आकर आपको आपकी सेवा में सहयोग देने के लिए धन्यवाद कहेगा। वह परमेश्वर के वचन के प्रसारण में आपकी रुचि के लिए आपको धन्यवाद देगा, क्योंकि वचन उस तक पहुंचा और वह बचाया गया। उसने परमेश्वर को जाना, उसने उद्धार का आनंद प्राप्त किया है। मेरे मित्रों, यह हमारा प्रतिफल होगा जो हमें स्वर्ग में प्राप्त होगा। हमें यह बात समझना है। यह एक अद्भुत भावी आशा है जिसकी हमें कलीसिया के उठाए जाने की प्रतीक्षा में रखना है। और भी अधिक आनंद की बात तो यह है कि आपकी गवाही के द्वारा मसीह यीशु में विश्वास लाने वाला आपके साथ प्रभु यीशु से भेंट करने के लिए उठाया जाएगा। मेरे मित्रों, यह क्या ही अद्भुत बात होगी कि हम सब परमेश्वर के साथ एक साथ होंगे। यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 में देखेंगे, जिसका विषय होगा मसीह का आगमन एक शुद्ध करने वाली आशा है। पहला थिस्सलुनीकियों का विषय कलीसिया का उठाया जाना है और थिस्सलुनीके के कलीसिया को लिखे दूसरे पत्र का विषय है प्रभु यीशु का पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए प्रकट होना। मुझे प्रभावित करने वाली बात यह है कि पौलुस ने थिस्सलुनीके की कलीसिया को ये सिद्धांत जो सिखाए वे कितने व्यवहारिक हैं। आज अंतिम समय और भविष्यवाणी के विचारकों ने इन विषयों को ऐसा बना दिया है कि वे बोझ बन गए हैं। जी हाँ, वे अच्छे चर्चा के विषय हैं, अच्छे विवाद के विषय हैं, परंतु जीवन के लिए वे अर्थहीन हैं। वे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं एवं व्यवहारिक शिक्षा नहीं देते हैं। पौलुस की शिक्षा सर्वदा भिन्न थी। इस अध्याय का विषय है कि प्रभु यीशु का आगमन एक पवित्र करने वाली आशा है। वह आपके जीवन को बदल देगी, वह आपके जीवन को प्रभावित करेगी। कलीसिया को उठाने के लिए प्रभु यीशु के आगमन की आशा। यदि इस आशा का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है तो इसका अर्थ है कि आपको प्रभु यीशु के पुनः आगमन में विश्वास नहीं है। जी हाँ, यह आपके लिए मात्र एक कल्पना, एक विचार है। यह विषय पत्री का मुख्य भाग है जो अध्याय 3 और अध्याय 4 के पद 12 तक है। तो हम देखेंगे तीमोथियुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को शुभ संदेश सुनाता है। तो आइए हम पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं। यहां पर ध्यान दीजिए, पौलुस थिस्सलुनीके के आने की लालसा तो करता है परंतु वह एथेंस में ही रुका रहता है और तीमोथियुस, सिलास तथा डॉक्टर लुका और अन्यों को थिस्सलुनीका में भेज देता है। वचन में लिखा है कि अंत में। यह महत्वपूर्ण शब्द पौलुस की चर्चा को पिछले अध्याय से जोड़ता है, कलीसिया में पारिवारिक संबंध। वह उस कलीसिया के लिए एक माँ के समान था, एक पिता के समान था, एक भाई के समान था। पौलुस उन्हें प्रभु यीशु के पास लाता है और उनसे बहुत अधिक प्रेम भी रखता था। वह कहता है कि प्रभु यीशु के आगमन पर वे उसकी महिमा और आनंद का कारण होंगे। जब प्रभु के प्रकट होने पर विश्वासी प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। पौलुस उन्हें दिल से प्रेम करता था, अतः जब वह उनके मध्य लौट ना पाया तो बहुत निराश हुआ। शैतान उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था। पौलुस को ऐसी आपातकालीन स्थिति में थिस्सलुनीके छोड़ना पड़ा था कि वह उन्हें अनेक शिक्षाएं और सिद्धांत पूरी तरह नहीं समझा पाया था। वह उनसे मिलने की लालसा ही नहीं करता था, वह उनके भविष्य के विषय में भी चिंतित था। मेरे प्रियो, पौलुस उन्हें शांति देना चाहता था। दूसरे शब्दों में वह पत्र के आरंभ में व्यक्त प्रेम का परिश्रम गुण प्रदर्शित कर रहा था। प्रेम लगाव या हृदय की सुखदायी तथा जोशीली भावना नहीं है। प्रेम दूसरों के कल्याण की बात सोचता है। किसी के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति ऐसी ही होती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उसका कल्याण खोजेंगे और यहां तक कि अपना जीवन भी उसके लिए संकट में डाल देंगे। मेरे मित्रों, यही सच्चा प्रेम है जिसे पौलुस थिस्सलुनीकी के विश्वासियों के साथ में करता है और उन्हें माता, पिता और भाई का प्रेम उन्हें देता है, क्योंकि वह जानता है कि ये नए विश्वासी जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है उन्हें इसकी आवश्यकता है। आज दुख की बात तो यह है कि हम में से कई कलीसिया के लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते, अपने भाई बहन से प्रेम नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि आज कलीसिया में फूट हैं, झगड़े हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उन्हें अपने भाई, अपने बहन के समान प्रेम करें। और निश्चय ही जब हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं, उससे मांगते हैं, तो हम इस प्रेम को समझ पाते हैं। और जब ये प्रेम हमारे जीवन के अंदर में आ जाता है तो हम आनंद से भर जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप अपने कलीसिया में अपने भाई और बहन से ऐसा ही प्रेम करते हैं जो मसीह में एक विश्वासी हैं? यदि नहीं, तो आज मुझे और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम अपने कलीसिया के उन विश्वासियों के साथ में प्रेम रखें। और यही बात परमेश्वर ने मुझे और आपको बार बार अपने वचन के द्वारा सिखाया है। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है, और आप अवश्य ही आज के इस वचन के द्वारा अपने जीवन में उन बातों को अमल में लाएंगे जो आपके लिए आवश्यक है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु ने हमको चुना है, गाएंगे हम उसके गीत।